नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, आपका परिवार ठीक होगा। स्वागत करता हूं मैं आप तमाम लोगों का इस शो जिसका नाम है क्राइम फ्लिक्स। एक कहानी जो अधूरी छोड़ी थी, वक्त आ गया उसे पूरी करने का। और एपिसोड नंबर 2, नॉन अलाइंस इन मोमेंट नाम। तो आज की ये कहानी, कहानीकांत। लेकिन उससे पहले, जैसे कि रिवाज है, एक क्विक न्यूज़ अपडेट। न्यूज़ अपडेट हालांकि बहुत इन दिनों कुछ आपने सुना होगा, पिछले 2 महीने से काफ़ी कुछ हुआ, इसमें श्रद्धा वालकर केस और काफ़ी सारे बहुत ऐसे भी जुर्म हुए हैं जो इंडिया में, जिसने झंझोड़ कर रख दिया सारे भारतवासियों को। लेकिन बहरहाल उसकी तो तफ्तीश चल रही है, तो उससे जो भी आउटकम निकल के आएगा वो तो हम सबको पता ही चलेगा। लेकिन एक न्यूज़ जो मुझे शायद लगा कि आप सब लोगों को बताना चाहिए, कि एक कोरियन यूट्यूबर थी जो मुंबई में व्लॉगिंग कर रही थी, और यहीं 2 मनचलों ने उसे छेड़ा। और जब ये न्यूज़ वायरल हुई तब मुंबई पुलिस हरकत में आई और उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, बिकॉज वो जो कोरियन है, कोरियन जो गर्ल है, जो स्ट्रीमर है, वो काफ़ी शॉक थी इस इंसिडेंट को लेके। और अमूमन यहाँ पर जैसे कि उनका स्टेटमेंट है कोरियन ब्लॉगर का, उन्होंने कहा था कि उनके साथ भी ये कई दफ़ा हुआ है अलग अलग देशों में, लेकिन जो मुंबई पुलिस का जो एक्शन करने का जो टाइम है वो काफ़ी कम उन्हें लगा, और जल्द से जल्द वो जो लड़के हैं वो गिरफ्तार कर लिए। लेकिन इसमें जो बताने वाली बात यह है कि उसी दौरान जब वो स्ट्रीम कर रही थी, तब उसी स्ट्रीम में से एक जो लड़का है, 2 लड़के एक्चुअली, आदित्य उनमें से एक का नाम, वो वहाँ पहुँचे उस जगह पे और उस लड़की को कंसोल किया, कोपअप किया, और साथ ही साथ उन्हें थोड़ा सा सेफ महसूस करवाया, जो कि काबिले तारीफ, ऐसे होना चाहिए। क्योंकि आप के देश में अगर कोई परदेसी आता है तो आप उनका ख्याल रखें, ये हमारी संस्कृति कहती है। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा बाद में ये सुनकर कि जो बंदा था आदित्य, उन्होंने उन्हें कंसोल किया, और साथ ही साथ वो व्लॉगर जो है वो कंटिन्यू अपने ट्रैवल पर निकल गई इंडिया के लिए। बहरहाल ये थी न्यूज़, और साथ ही साथ अभी चलते हैं आप अपनी कहानी का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रभाकरण, जाफना और लिट्टे, साथ ही साथ भारत के एक प्रधानमंत्री जो मेरे भी फेवरेट रहे हैं, मिस्टर राजीव गांधी, उनकी हत्या से जुड़ा हुआ ये मामला। उसके बाद जब प्रभाकरण को सपोर्ट एक बैक मिला इंडिया से, और क्योंकि हमें रशिया के साथ दोस्ती निभानी थी, और जो अमेरिकन ट्रांसमीटर है, जो रेडियो ट्रांसमीटर है, वो उन्होंने लगाया था श्रीलंका के सबसे निचले हम्बनटोटा बंदरगाह पे। ये जो रेडियो ट्रांसमीटर है, इसका जो कनेक्शन था वो था डायरेक्टली रशिया और अमेरिका से, बिकॉज रशिया चाहता था ऊपर से, क्योंकि रशिया वाला एरिया सब ठंड और समुंदर जो है वो जम जाता है, वहाँ से नौसेना काम नहीं आती, तो वो मलक्का के सहारे, जो कि अपने अंडमान निकोबार से होते हुए जाता है, वहाँ से वो अपनी फौज जाना चाहते थे रशियन। लेकिन क्योंकि अब वहाँ पे डोमिनेंस था इंडिया का, रशिया ने मदद मांगी, हमने मदद करी, और साथ ही साथ उसी बीच में जो है वो श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ। ये सिविल वॉर बढ़ते बढ़ते काफ़ी हद तक बढ़ गया, और जब रियलाइजेशन हुआ श्रीलंका को, तो श्रीलंका का खुद भारत के पास आया और उसने बोला कि आप इसे शांत कराएं। हालांकि पता था श्रीलंका और श्रीलंका के लोगों को कि प्रभाकरण जो है, ये इसे जो सपोर्ट मिल रहा है वो कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ से ही मिल रहा है। लेकिन जब इंडिया ने अपनी बात रखी कि आपने वो ट्रांसमीटर हटाना है, तो श्रीलंका ने बशर्ते उसे हटा दिया ट्रांसमीटर को, और अमेरिका को वहाँ पर मुँह की खानी पड़ी। लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है यहाँ पर, जब इंडियन गवर्नमेंट को यह समझ में आया कि प्रभाकरण जो है वो काफ़ी जघन्य अपराध करने लगा है श्रीलंका में, काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने जेनोसाइड करना चालू किया। हालांकि एक हिस्ट्री ये भी रही है कि श्रीलंकन्स जो है वो तमिल लोगों को हेट करते हैं, उनका भी वो जो है वो जेनोसाइड करते हैं, इस वजह से जो अपना साउथ, जो डाउन साउथ वाला जो पार्ट है वो पसंद नहीं करता श्रीलंका को, ये फैक्ट है। सो बहरहाल जब प्रभाकरण को ये पता चला, तब श्रीलंका जब इंडिया के पास आया, तो इंडिया ने डिसाइड करा, क्योंकि इंडिया भी एक चश्मे से देखा जाए कि
ये सही था, प्रभाकरण को रोकना जरूरी था, क्योंकि दिली दिल जो डाउन साउथ के जो लोग हैं उनको हमदर्दी बढ़ने लगी थी प्रभाकरण से। ये हो जाता एक नया कश्मीर मुद्दा। अगर वहाँ पे प्रभाकरण एक अपना जाफना में एक अपना अलग स्टेट बना लेता और वहाँ पे लोग बस जाते तो ये भारत के लिए भी बहुत प्रॉब्लमेटिक था। ये हो जाता एक नया कश्मीर मुद्दा। पूरी तरीके से नहीं हुआ था कभी, मतलब ऐसा होने लगा था। दूरदर्शिता थी हमारे इंडियन गवर्नेंस की कि अगर सपोज आप यहाँ पे रह के आप पड़ोसियों का जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, सो ये जो था वो काफ़ी नॉन एक्सेप्टेबल हो जाता इंडिया के लिए। ऐसा नहीं है कि हो गया था, लेकिन हो जाता है, तो एक तरीके से वो सही भी था। तो फिर तब डिसाइड किया गया कि राजीव गांधी जो थे वो उन्होंने डिसाइड करा कि उन्होंने अपनी इंडियन आर्मी जो है वो पहुंची और यहाँ पर काम हो जाता है इंडियन आर्मी का। अब जब इंडियन आर्मी जब मैदान में आई, सो ऑब्वियसली बात है प्रभाकरण के आतंकवादियों को चुन चुन के, अब आप कितना भी ना हो तो आतंकवादी ही ना हो, आप विरोधी ना हो, आप कैसे लड़ पाओगे मिलिट्री से। हालांकि प्रभाकरण के पास में सब आर्टिलरीज थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक आर्मी के सामने एक किसी विद्रोही का गुट, इसमें कोई भी जो है बैटल फील्ड में ऑब्वियसली आर्मी ही जीतेगी। तो इंडियन आर्मी ने हमेशा की तरह वैसा ही काम किया, बहुत बहुत ही उम्दा तरीके से जो है वहाँ के जो विद्रोहियों को, जो लिट्टे के जो आतंकवादी थे उनको ख़त्म करना चालू किया। और साथ ही साथ तब प्रभाकरण को समझ में आया, प्रभाकरण के तब दिमाग में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि हम सिर्फ मोहरा थे जबकि इंडिया सिर्फ मदद करना चाहता रशिया की, और श्रीलंका जो था वो उसका पार्ट था उसी साजिश का। जब ये बात पता चली प्रभाकरण को तो वो काफ़ी गुस्सा गया, बहुत ज़्यादा उसके अंदर क्लेश पैदा हो गया इंडियन गवर्नेंस के लिए, राजीव गांधी के लिए। हालांकि श्रीलंका के लोग भी कहीं ना कहीं हेट करने लगे थे, बावजूद इसके हम गए, हमने वहाँ पर हमारी जो आर्मी है उन्होंने सारे लिट्टे को खदेड़ कर रख दिया और एक तरीके से कह देते उनको ख़त्म कर दिया। बदले में हमें क्या मिला? कहीं ना कहीं देखिए ये दाग ये जियोपॉलिटिक्स में चलता है, और ये कहीं ना कहीं ये दाग एक मान के चले कि हमारे गवर्नेंस पर भी लगा है कि हमने रशिया की मदद करने के लिए, ये क्यों हो रहा था, ये सब अमेरिका और रशिया के वजह से हो रहा था, कहीं ना कहीं हम उसको दोस्ती के लिए हमने ये सब काम किए। जब प्रभाकरण को ये बात पता चली, उन्हें समझ में आया कि वो मोहरा बन गया, तब उन्होंने ठान लिया कि वो राजीव गांधी को छोड़ेंगे नहीं। सो ऐसा एक वाकया भी हुआ था, एक जो श्रीलंका, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि श्रीलंका के लोग क्यों हेट करने लगे थे, ऐसा वाकया भी हुआ था कि जब लिट्टे जब ख़त्म होने के कगार पे था, ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कगार पे था, प्रभाकरण जो थे वो अंडरग्राउंड हो गया था वो, तब राजीव गांधी गए थे श्रीलंका में। तो श्रीलंका में एक जब उनके ऑनर पर उन्हें बुलाया गया, और श्रीलंका के जो एक आर्मी था, आर्मी का एक जो सोल्जर था, उन्होंने बट से राजीव गांधी का कंधा तोड़ दिया था। जब भी आप कोई फॉरेन के जब प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आते हैं तो वो जो गार्ड्स रहते हैं जो उनको सलामी देते हैं, उनकी बंदूकें तो खाली होती हैं, तो वो बंदूक का जो था उन्होंने बट राजीव गांधी के कंधे पे दे मारा। सो ये एक वीडियो पॉपुलर भी है, आप चाहें तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और उस वक्त काफ़ी गुस्सा था श्रीलंका के लोगों को, लेकिन बावजूद इसके जब राजीव गांधी वापस आए कहीं जगह पर वो बिज़ी हुए, और उसके बाद में एट दी एंड प्रभाकरण को मौका मिल गया उनको ख़त्म करने का, और मद्रास में तब का नाम, आज तो शायद तमिलनाडु चेन्नई, तब मद्रास हुआ करता था। मद्रास में जब राजीव गांधी गए थे तब नलिनी नाम की एक लड़की, एक औरत, वो एक ह्यूमन बॉम्ब पहनकर अपने सारे शरीरों पे बॉम्ब पहनकर राजीव गांधी के पास बढ़ी, उनका उन्होंने पैर छुआ और उसी वक्त अपने कमर में रखा हुआ एक जो बटन है वो दबा दिया, और साथ ही साथ वहीं पे अपने साथ राजीव गांधी के भी चिथड़े उड़ गए। ऐसे हमने खोया एक बेहद लवेबल प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ राजीव गांधी, मिस्टर राजीव गांधी, उनकी इस तरीके से हत्या कर दी गई प्रभाकरण ने। और बाद में तो जो है वो आर्मी के हवाले से, श्रीलंकन के हवाले से खबर है कि उन्होंने प्रभाकरण को भी मार दिया गया। बहुत सालों की बात है, राजीव गांधी मरे उनके बाद, ये लगभग आफ्टर 2000 की बात है जब प्रभाकरण की मौत हुई। सो ये थी पूरी कहानी, और साथ ही साथ ये जो चला कोल्ड वॉर ये थमा नहीं, इंडिया और यहाँ पर तो हमने इंडिया ने एक प्राइम मिनिस्टर खोया, श्रीलंका ने पूरी पूरी जीडीपी उनकी जो थी वो काफ़ी सिविल वॉर की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब थी। इवन दो ये जो आज जो श्रीलंका में जो क्राइसिस है, ये कहीं ना कहीं उस दौरान जो कुछ उनका नुकसान हुआ था तब से लेके आप ये कह सकते हैं कि एक पोर्शन वो उनके साथ चलते आ रहा है। लेकिन ये सब किस लिए हुआ? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका और रशिया आमने सामने थे। तो आप इस चीज़ से समझिए कि आप अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें सीरिया, ईरान, कुवैत, इराक या लेबनान या ये जो जितने भी मिडल जो गल्फ कंट्रीज़ है जो आज एक बेल्ट में है सिविल वॉर की, इवन दो अफगानिस्तान, ये सब किस लिए? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बर्बाद हुए हैं क्योंकि रशिया और अमेरिका आमने सामने हैं। इवन दो इसका एक ताज़ा एग्जांपल आप यूक्रेन भी देख सकते हैं। बहरहाल जब जब ये देश एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं कोल्ड वॉर में, अन्य देशों का बहुत नुकसान हुआ इसमें, और ये बात काफ़ी जल्द समझ गए। इसलिए जो नेहरू जी थे, ये शायद उनके ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा एक फैसला था, और मुझे लगता है कि ये काफ़ी सराहनीय फैसला था कि हम किसी और के गुट में ना जाएं, हम तीसरी दुनिया वाली बने, ना ही हम अमेरिका के साथ रहेंगे ना ही हम रशिया के साथ रहेंगे, पर कहीं ना कहीं हमारा जो कनेक्शन था वो रशिया के साथ था, आज भी है। आज भी रशिया भारत के साथ खुल के समर्थन करता है, और कहीं ना कहीं कई जगहों पे जब रशिया का समर्थन मिलता है तो हमें भी वो एज अ ग्रेटिट्यूड हमें भी वो करना ही पड़ता है रशिया के लिए। बहरहाल फिर भी हम अपनी अलग पॉलिसी लेके चलते हैं, इंडिपेंडेंट पॉलिसी लेके चलते हैं। ऐसा नहीं कि रशिया जो भी करेगा, हम जो भी कहेगा हम उसे मान लेते हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हाँ। सो बहरहाल उसके बाद जब ट्रांसमीटर हटा, हम्बन टोटा बंदरगाह काफ़ी कुछ चर्चा में हुआ था। अभी भी आप देखेंगे तो चाइना ने जो है वो एक बंदरगाह जो है श्रीलंका का जो इकोनॉमिक के तौर से अरेस्ट कर लिया है, अपने अंडर ले लिया उन्होंने, वो हम्बन टोटा बंदरगाह ही है। सो ये हम्बन टोटा की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी पहले से है, बहुत पहले से। अब क्योंकि श्रीलंका जो है वो क्राइसिस से उभरने की कोशिश कर रहा है, तो साथ ही साथ इंडिया जो है वो उसकी मदद कर रहा है। लेकिन आप यूँ समझे कि जब भी इंडियन गवर्नमेंट श्रीलंका के लिए कुछ करना चाहती है तो जो डाउन साउथ के जो तमिलनाडु वाले जो लोग हैं वो काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। एक दफ़ा मुझे याद है कि मनमोहन सिंह मिलने गए थे श्रीलंका में, तो मोदी जी जैसी सरकार नहीं थी मनमोहन सिंह जी की, उनकी कोलेबरेटर्स थे, उनके अलाइंस उनकी सरकार थी, बहुमत वाली सरकार नहीं थी। तो जो तमिलनाडु वाले जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए थे मनमोहन सिंह से कि क्यों आप उनसे बात कर रहे हैं, आप उनसे बतिया क्यों रहे हैं, आप उनसे बात नहीं कर सकते। सो बहरहाल ये थी आज की कहानी, कहानी का एंड। इसलिए हमने राजीव गांधी को खोया, साथ ही साथ ये जितना भी कुछ हुआ था श्रीलंका में उसका रीज़न अमेरिका और श्रीलंका है। और इस बात से मुझे एक सीख मिलती है कि अगर कोई भी बड़ा देश या कोई भी बड़े लोग आपसे, अगर कोई भी बड़े लोग अगर आप में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये समझिए कि वो एक्सचेंज रूल बिल्कुल लागू होगा, कहीं ना कहीं वो आपसे फ़ायदा ज़रूर ढूंढेगा, आज नहीं तो कल। इसलिए चाहे वो बड़े लोग हों अपने से बड़े, जैसे कि बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रईस और पुलिस वालों से दोस्ती दुश्मनी अच्छी नहीं है, वो इसलिए हैं क्योंकि दुनिया में एक्सचेंज रूल लगता है। अगर कोई आप पे इन्वेस्ट करता है तो ऑब्वियसली वो चाहेगा कि आप उसे रिटर्न दें, भले ही कुछ भी उसका मोल हो या फिर वो कैसे भी किसी भी वजह से हो। सो बहरहाल ये थी स्टोरी, आई होप आपको पसंद आई होगी आज की ये कहानी लिट्टे प्रभाकरण और राजीव गांधी जी की क्यों हुई हत्या। ये अभी आपको पिक्चर समझ में आई होगी पूरी सारी डिटेल्स में। सो उम्मीद है आप सब लोग इन्जॉय करेंगे इस एपिसोड को, और क्योंकि अभी इतना एक दो महीने का ब्रेक हुआ है तो मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरे एपिसोड्स हैं वो जल्द के जल्द नई कहानी के रूप में आपके सामने आए और आप उसे इन्जॉय करें। और तब तक आप अपना और अपने परिवार का बेहद ख्याल रखें, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें क्राइम फ्लिक्स को। धन्यवाद।